मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है ऋषभ चौधरी, आप आक्या देह मध्य प्रदेश से हैं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित रूप से मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं, तो कुछ सूचनाएं आप जान लें। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको शनिवार को एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही साथ चूंकि शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, आप लोगों में से भी किसी की छुट्टी होती होगी या सभी की छुट्टियां होती होंगी, तो हम लोग कुछ स्पेशल रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इन छुट्टियों का आप और बेहतर इस्तेमाल अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से कर सके। तो उसके तहत आपको योजना के दो आर्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, एक हिंदी में होगा और एक इंग्लिश में, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल्स होंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इसके साथ ही दोस्तों एक वीकली क्वेश्चंस दिया जाता है जिसे मैं साप्ताहिक प्रश्न हम लोग कहते हैं, और वो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वो आपके अभ्यास के लिए होता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। आज के मुख्य विषय के तहत मैं अभी जो चुनाव के परिणाम हमारे कल आए हैं जो दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या निहितार्थ है, उसके क्या अर्थ है, उस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दो महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों मेरे सामने हैं, और सच पूछे तो ये घटनाएं एक दो दिन पहले की ही हैं, लेकिन मैं जानबूझकर इन घटनाओं की चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा था कि कुछ और मटेरियल अच्छे से मिल जाए, तब मैं आपसे अगर बात करूंगा तो वह एक सार्थक बात हो सकेगी। आपको मालूम है कि भारत ने एक फिर से अपना एक सैटेलाइट बहुत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है अंतरिक्ष में, और उसका नाम है रीसेट 2B। रीसेट 2B, देखिए इसका रीसेट 2B इसलिए है कि इससे पहले रीसेट 1 छोड़ा जा चुका है और रीसेट 2 भी छोड़ा जा चुका है, तो इसका नाम है रीसेट 2B। तो रीसेट 1 ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जो रीसेट 2 है वो काम तो कर रहा है लेकिन उसकी एक लिमिटेशन हो गई है। लिमिटेशन थी ही, लिमिटेशन ये है कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो फिर वह जो पृथ्वी पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी इमेजेस नहीं भेज पाता है। माना यह जा रहा है, कुछ विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि अभी जो बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप देख रहे हैं कि उसके प्रमाण को लेकर के बहस चलती, हुआ भी नहीं हुआ, हुआ तो कितने मारे गए, इसको लेकर के काफी राजनीतिक बातचीत हुई, लेकिन पुख्ता प्रमाण उस तरीके से नहीं दिया जा सका। उसका कारण यही बताया जा रहा है कि हमारा जो रीसेट 2 था, चूंकि उस समय बादल छाए हुए थे तो वो इमेज नहीं ले पाया, इस कमी को इनफैक्ट पूरा करेगा रीसेट 2B। मैंने जानबूझ करके रीसेट 2 की बात कही है क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में अब आपको रीसेट 2B बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये जो रीसेट 2 हमारा बी है, ये अगर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाकायदे ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी की इमेज ले लेगा, यहां तक कि रात में भी इमेज ले लेगा, और अगर प्रतिकूल मौसम हुआ तब भी यह इमेजेस लेकर के हमें प्रोवाइड करा देगा। तो इसके दो तीन क्षेत्रों में बहुत बड़े फायदे होंगे, जैसा कि मैंने अभी बालाकोट की बात की, तो सामरिक क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है ही, और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास इसी तरह का ऑलरेडी सैटेलाइट है छोड़ा हुआ है, और चीन के पास भी है, तो इस दृष्टि से हमारे पास भी होना हमारी सामरिक स्थिति को मजबूत ही कहीं न कहीं बनाएगा, और इसका इस्तेमाल बकायदे मौसम वगैरह के बारे में भी अनुमान लगाने में हमारे लिए मददगार होगा। तो दोस्तों ये थी रीसेट 2B के बारे में, और इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद जो दूसरी घटना है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की घटना है, 3 दिन पहले की घटना है, आपने उसमें सुना था कि उसमें हमारे जो रिटायर्ड विधायक है, निवर्तमान विधायक सहित सुरक्षाकर्मियों को मिलाकर के लगभग 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 11 लोगों की हत्या और एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन चुनावी माहौल इतना गर्म था कि इसकी बहुत चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन अखबारों में बकायदे ये बात आई थी और आज इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो कल की जनसत्ता में छपा था। और ये माना जा रहा है कि ये जो हत्या की गई है एक नगा अलगाववादी संगठन है और इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NSCN। ये आपको क्यों जानना चाहिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जनरल स्टडीज मेंस का थर्ड पेपर है उसमें सुरक्षा आपका टॉपिक है, सुरक्षा बकायदे मेंस जो पेपर का नाम है तीसरे में उसमें एक सिक्योरिटी मेंशन किया हुआ है और ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चूंकि टॉपिक है इसलिए आपको कुछ नाम मालूम होने चाहिए ताकि आप अपनी बात को एक तर्कपूर्ण विश्वसनीयता के साथ कर सके। बेसिकली इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस संगठन के साथ इसकी प्रॉब्लम यह है कि बृहत्तर नागालैंड की मांग कर रहा है, मतलब नागालैंड अभी एक राज्य है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हमें एक बड़ा नागालैंड चाहिए जिसे वो नागालिम नाम देता है। वो किस किन क्षेत्रों की मांग कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को नागालैंड में मिलाने की बात कर रहा है। सरकार इस बात को मान नहीं सकती क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग इसके लिए तैयार नहीं है और न हो सकते हैं, तो ये एक बड़ी विचित्र किस्म की स्थिति पैदा हो गई है और उसी के कारण सच पूछिए तो नागालैंड में इस तरह की जातीय हिंसा बीच बीच में भड़क उठती है। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है और मैं आपको एडिटोरियल कमेंट तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं, बाकी बातें आप इसमें देख सकते हैं। मित्रों अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं, चुनाव 2019 के तहत हमें अब क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, मतलब 2019 का इलेक्शन हो गया। पहली बात तो मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि देखिए व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, है ना, हर नागरिक के अपने विचार होते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब आप सिविल सर्विस के एक परीक्षार्थी के रूप में किसी बात का विश्लेषण करते हैं, किसी तथ्य का विश्लेषण करते हैं, तो आपके सामने राजनीतिक दल के प्रति आपकी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए बल्कि राष्ट्र होना चाहिए और भारतीय संविधान होना चाहिए चाहिए कि भारतीय संविधान आपको क्या रास्ता दिखाता है और कैसे उस रास्ते पर चल करके आप राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। अब ये जो चुनाव हुए हैं, देखिए चुनाव पर सीधे सीधे प्रश्न कोई पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका स्वरूप क्या है, और जो चुनाव हुए हैं अभी वो एक तरह से डेमोक्रेसी के स्वरूप को व्यक्त करने वाले होते हैं। 2019 के चुनाव इस मायने में कुछ बहुत ही अद्भुत बिंदु हमारे सामने रखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, वो ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि चुनाव में अब जातीय समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, यानी कि जाति के आधार पर अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसके लिए खासकर जो समीक्षक हैं वो जो उदाहरण पेश कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात लें तो देखिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, वो समाज का जो बिल्कुल निम्न तबका है, आप यूं कह लीजिए दलित वर्ग, उस पर आधारित, मूलतः उस पर आधारित पार्टी है, और समाजवादी जो पार्टी है अखिलेश जी की, वो एक तरह से ओबीसी और उससे थोड़े से नीचे वर्ग की मिलीजुली पार्टी है। यानी कि इन दोनों पार्टियों का जो आधार है मूलतः ये कहा जाता है कि वो जाति आधारित है। दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी थी लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां के जो मतदाता हैं उन्होंने अब जाति पर आधारित मतदान करने से इनकार कर दिया है, इस बात को कहा जा रहा है। देखिए जब कोई भी चुनाव होते हैं इस तरह के, जब ये 2019 के चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आते हैं, तो उससे पहले जो सरकार होती है, राइट, 5 साल तक की सरकार होती है, ये भी माना जाता है कि ये जो मतदान है उस सरकार की नीतियों की स्वीकृति अस्वीकृति को भी व्यक्त करती है। अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आई है तो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान भारतीय जनता ने उनके पिछले साल की जो नीतियां थी उनको स्वीकार किया है और पिछली बार से भी अधिक मत देकर के, यूं कह लीजिए कि उसके प्रति अपना एक उत्साह भी व्यक्त किया है कि नहीं नहीं हम और ज्यादा चीजें इसी को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। एक बात और कही जा रही है कि इस बार कि चुनाव में राष्ट्रवाद एक प्रबल मुद्दा बना। राष्ट्रवाद, देखिए जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ एक विकृत राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद उनके दिमाग में आता है। दरअसल राष्ट्रवाद अपने आप में उस रूप में बुरा नहीं है जैसे जिसे कि आप राष्ट्र प्रेम कहते हैं। हर को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने राष्ट्र की संस्कृति से लगाव होनी चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति चिंतित होना चाहिए, यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब वो राष्ट्रवाद एक तरीके से खंडित तरह का हो जाए तब फिर जाकर के एक चिंता की बात होती है। वैसे भी अगर आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो 1850 के आसपास का आप इतिहास पढ़िए यूरोप का खासकर, तो यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत प्रबल रूप में उभरा और वही कारण रहा कि यूरोप में इतने देश बने। तो राष्ट्रवाद अपने आप में कोई मत समझिएगा कि कोई बुरी बात है, हाँ संतुलित तरीके से आपकी इस पर स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। तो इस बार के चुनाव में राष्ट्रवाद बहुत प्रबल रहा है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो दो तीन तरह के आंकड़े हमें दिखाई देते हैं जो फिर से एक तरह से लोकतंत्र की जो मजबूती है उसको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी कमी को भी दिखा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सामान्य आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है शहरी क्षेत्रों की तुलना में, और जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं कैलकाटा, कोलकाता जिसे आप कहते हैं, चेन्नई और मुंबई और दिल्ली, उनमें तो मतदान बहुत मतलब 50-55% के आसपास ही हुआ, कहीं तो 50% से भी कम मतदान है, जबकि हमारा जो राष्ट्रीय औसत है अभी तक आजादी के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है 67% के आसपास। ये एक मेच्योरिटी का प्रतीक है कि मतदान का प्रतिशत हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में जहां मतदान 80-85% होने चाहिए क्योंकि वहां लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति थोड़ी सी सजगता होनी चाहिए, अतिरिक्त सजगता होनी चाहिए, वहां मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत इसका ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर के काफी संतोषजनक प्रतिशत इसका है। एक बात और जो बड़ी संतोष की बात है कि पहले स्त्री और पुरुष के मतदान के बीच में लगभग 10% का डिफरेंस होता था, अब वो घट करके 4-5% का लगभग रह गया। यह भी बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि अब महिलाएं काफी पहले की तुलना में अधिक संख्या में मतदान करने आ रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि हमारी महिलाएं ज्यादा सतर्क हो रही हैं, इम्पावर्ड हो रही हैं, और आपको मालूम है कि सरकार महिलाओं को इम्पावर्ड करने के लिए कितने सारे योजनाएं चला रही हैं और उसमें सबसे बड़ी जो योजना है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की योजना है, तो उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए या और हम लोकसभा के पूरे चुनाव को लेकर के चलें तो ये देखा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस भी अब एक बड़ी बात हो रही है कि जो राज्य जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। खासकर वेस्ट बंगाल में अभी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को काफी एक तरह से हार का सामना करना पड़ा, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यह माना जा रहा है कि नहीं, वहां की जो गवर्नेंस है, वहां का जो गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और फिर जो युवा मतदाता है उनके बारे में ये कमेंट मिल रहा है कि युवा मतदाताओं ने बड़ी संख्या में जाकर के मतदान किया है और बड़ी बात यह है कि उन्होंने विकास सुरक्षा जैसे मुद्दों के आधार पर मतदान किया है, जाति के आधार पर नहीं। तो ये जो युवा मतदाता है ये भविष्य के मतदाता है, तो यह भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। तो दोस्तों लोकतंत्र के जो निहितार्थ हैं 2019 के चुनाव में जो हमें दिखाई देते हैं उसके कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। आज के तो अखबार पूरी तरह से इन्हीं खबरों से भरे पड़े हैं, जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ और भी नए बिंदु आपको मिले, आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो दोस्तों मुख्य विषय को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से एक दोस्त का नाम है राकेश कुमार जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अपनी शुभकामनाओं के साथ समाप्त करना चाहूंगा। शुभकामना इस बात की कि बीच के जो दो दिन हैं आपके बड़े सुखद हों, सोमवार को फिर मुलाकात होगी और बातें होंगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।